समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, आज सवेरे के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। सुभद्रा रामाचंद्रन के साथ आज के इस अंक में मैं हूं नवीन सक्सेना। दिन बहुत खास है आज, क्योंकि आज का दिन इसलिए खास है क्योंकि आज 25 जनवरी है। शायद इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि आज के दिन बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई थी, बहुत सारे ऐसे दिन सेलिब्रेट किए थे जिनका हम आज जिक्र करेंगे। और सुभद्रा मुझे इशारा कर रही है, नवीन ये मैं बताऊंगी कि आज का दिन क्यों खास है। सुभद्रा,
हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू आवर न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे। ऑफ कोर्स वी जस्ट टॉक्ड अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग स्टफ। फर्स्ट इज ऑफ कोर्स आवर नेशनल वोटर्स डे,
बिल्कुल,
एंड देन इट इज फॉलोड बाय ऑफ कोर्स टुडे इट्स वी आर अ डेमोक्रेसी नवीन, एंड ऑफ कोर्स also the largest one at that. So the need of the hour is to work together and select a government through election process. And today is also the National Tourism Day. Every year this day is celebrated in India to raise awareness and educate people about the importance of tourism and the role it plays in the Indian economy.
दिन बहुत खास है, आज टूरिज्म डे है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस है और आज ही हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस भी है। चर्चा करेंगे इन सब पे, बात करेंगे इस सब पे हम अगले आधे घंटे। बने रहिए हमारे साथ, अपने रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा तेज कर दीजिए ताकि घर के हर कोने में आप तक सुभद्रा और मेरी आवाज जा सके। और हाँ, अगर आप अंग्रेजी गानों के शौकीन है ना, तो इस कार्यक्रम का आखिरी हिस्सा जरूर सुनिएगा।
डेफिनेटली
बहुत कुछ सुनाने वाले हैं।
डेफिनेटली डेफिनेटली, थैंक यू सो मच।
नजर डाल लेते हैं अब तक की खास खबरों पर।
यस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल होल्ड टॉक्स विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया Prabowo Subianto in New Delhi today. Both the leaders will undertake a comprehensive review of bilateral ties and discuss regional and global issues of mutual interest. Several agreements will be signed between the two countries after the talks. President Subianto arrived in New Delhi on Thursday on a four-day state visit to India.
Desh aaj 15th Rashtriya Matadata Divas mana raha hai. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में आयोजित मुख्य समारोह में शामिल होंगी। इस वर्ष मतदाता दिवस का विषय है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। समारोह के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू सुचारू रूप से चुनाव संपन्न कराने के लिए राज्य और जिला अधिकारियों को सर्वोत्तम प्रक्रिया पुरस्कार प्रदान करेंगी।
यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव हैज सेड Trust and talent are the two most important factors attracting the world to India. Talking to media at the World Economic Forum at Davos in Switzerland, Mr. Vaishnav said, despite all the disruption and issues the world is facing at present, India has emerged as a very trusted country that respects intellectual property rights. He said India has clearly demonstrated to the world that under all circumstances, it is a country that believes in peace, growth for everybody, and inclusive development. The minister said global companies are very enthused about India, with existing players planning to scale up and several new ones wanting to set shop in the country.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। ये संबोधन शाम 7 बजे से आकाशवाणी के राष्ट्रीय नेटवर्क और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी तथा अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनल पर क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण होगा। आकाशवाणी क्षेत्रीय नेटवर्क पर रात 9:30 बजे से क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण करेगा। और अब बात सर्वभाषा कवि सम्मेलन की। आज होगा विश्व के सबसे बड़े सर्वभाषा कवि सम्मेलन का प्रसारण। और सुभद्रा, हर साल की तरह इस साल भी गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आकाशवाणी के बहुप्रतिष्ठित और बहुचर्चित कार्यक्रम सर्वभाषा कवि सम्मेलन का प्रसारण समूचे नेटवर्क पर रात 10 बजे से किया जाएगा। इस कवि सम्मेलन में देश के लगभग 400 कवि एक साथ एक मंच पर काव्य पाठ करेंगे। संविधान में मान्यता प्राप्त सभी 22 भाषाओं के प्रमुख कवियों की कविताएं सभी 22 भाषाओं में अनुदित होकर आकाशवाणी के संबंध केंद्रों से प्रसारित किए जाएंगी। इन कवियों का चयन संबंधित भाषा में स्थित आकाशवाणी केंद्र द्वारा किया जाता है। और अब इसके बारे में और तमाम जानकारी के साथ सीधे हम जुड़ते हैं दीपमाला कौशिक के साथ।
इस सर्वभाषा कवि सम्मेलन में देश के लगभग 400 कवि एक साथ एक मंच पर काव्य पाठ करेंगे। संविधान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं के प्रमुख कवियों की कविताएं सभी 22 भाषाओं में अनुदित होकर आकाशवाणी के संबंध केंद्र से प्रसारित की जाएंगी। इन कवियों का चयन संबंधित भाषा में स्थित आकाशवाणी केंद्र द्वारा किया जाता है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज इस सर्वभाषा कवि सम्मेलन की प्रमुख विशेषता ये भी है कि पहले संस्कृत भाषा की कविता का प्रसारण किया जाता है, इसके बाद अन्य कविताएं प्रसारित होती हैं। इस प्रसारण की एक खास विशेषता है, जैसे यदि गुजराती भाषा की कविता आकाशवाणी दिल्ली से 10:40 पर हिंदी भाषा में प्रसारित हो रही होगी, तो उसी समय आकाशवाणी मुंबई से ये कविता मराठी भाषा में, कोलकाता से बांग्ला में और चेन्नई से तमिल भाषा में प्रसारित हो रही होगी। इस वर्ष हिंदी भाषा के लिए वरिष्ठ गीतकार डॉक्टर धनंजय सिंह गीत धा के लिए, डॉक्टर दिलीप मेहरा छंदमुक्त कविता के लिए, अहमद वसी उर्दू भाषा के लिए और युवा कवि डॉक्टर युवराज भट्टराई संस्कृत भाषा के कवि होंगे। आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल FM गोल्ड, आकाशवाणी यूट्यूब चैनल तथा AIR लाइव न्यूज 24/7 से इन सभी कविताओं का अनुवाद हिंदी भाषा में प्रसारित किया जाएगा।
Poetry to sports now. In the Women's Hockey India League, the JSW Surma Hockey Club stormed into the final after defeating Sarachi Rar Bengal Tigers by 4-2 in Ranchi yesterday. We have a report from our correspondent.
On Friday in Ranchi, in Women's Hockey India League, JSW Surma Hockey Club topped the points table by defeating Sarachi Rar Bengal Tigers with a scoreline of 4-2. With this victory, JSW Surma Hockey Club have set up the final clash against the Odisha Warriors, which will be played on 26th January. In the second match of Hockey India League, Sarachi Rar Bengal Tigers were against Kalinga Lancers. As both the team are eyeing for a place in the semi-finals, they were putting their best in the match to earn points. The match saw a fierce battle between the two teams. Sarachi Rar Bengal Tigers, who got better off Kalinga Lancers with a margin of 5-3. In the last quarter, an angle ball from Pradeep Singh Sandhu resulted in a fifth goal for Sarachi Rar Bengal Tigers, gave them a lead of 5-3. With this score in favor of Sarachi Rar Bengal Tigers, they regained third position in the points and they kept their hope alive for the semi-finals. On Saturday in Rourkela, Tamil Nadu Dragons will play against Team Gunasika and Hyderabad Tufans will meet UP Rudras. This is Manoj Yadav reporting for Akashvani News.
In some more updates from the world of sports, Indian Grandmaster Inian Paneerselvam has clinched the 9th Johor International Open Chess Tournament title in Malaysia. Here's a quick roundup of the latest sports action from chess and cricket to tennis as key matches and tournaments unfold worldwide.
The 22-year-old Indian Grandmaster Inian from Erode in Tamil Nadu accumulated 8.5 points in 9 games. He defeated Vietnamese Grandmaster Nguyen Van Hieu in the final round in an impressive performance. Moving towards Tata Steel Chess Tournament, the round 6 has concluded, making the halfway of the tournament at Wisganzi, Netherlands. Nodirbek Abdusturov of Uzbekistan is currently leading on the standings, while India's R. Pragananda is on the second and D. Gukesh is on the third spot. Next, we move on to the world of cricket, where the Surya Kumar Yadav-led Indian side will take on England in second T20I at M. H. Chidambaram Stadium in Chennai this evening. The men in blue are currently leading the 5-match series 1-0. Last we have from Australian Open Tennis, where world number 1 and defending champion Aryna Sabalenka will face 19-seed Madison Keys of United States in the women's singles final at Rod Laver Arena in Melbourne today. Belarusian Sabalenka is aiming to become the first woman since 1999 to win 3 consecutive Australian Open titles. And in the men's doubles final today, Britain's Henry Patton and Harry Heliovaara of Finland will face third seeds Italian pair of Simone Bolelli and Andre Vavasori. Chiragja, Akashwani News, Delhi.
ये थी खेलों की दुनिया और आइए अब आपको लिए चलते हैं प्रयागराज महाकुंभ की दुनिया में।
मेला प्रशासन ने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि श्रद्धालु स्नान के बाद उसी सेक्टर या जोन से वापस लौटें जिस सेक्टर से वे घाट की ओर पहुंचे हैं। किसी भी स्थिति में श्रद्धालुओं को संगम नोज या अन्य जोन में जाने की इजाजत नहीं होगी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए इस महीने की 27 से 29 तारीख तक जोन के बीच खासकर संगम नोज पर आवाजाही बहुत ही कम रखने का निर्देश दिया गया है। इस बार आसान पहुंच और पवित्र स्नान के लिए 12 किलोमीटर लंबा घाट बनाया गया है। श्रद्धालुओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे प्रवेश के दौरान निकटतम घाट पर ही स्नान करें। घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी संख्या को नियंत्रित करने के लिए निकासी दल भी तैनात किए जाएंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज।
और सुभद्रा, इसके अलावा मौनी अमावस्या के अवसर पर महाकुंभ मेले में करीब 10 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है और इसको देखते हुए राज्य सरकार यातायात और भीड़ के प्रभावी प्रबंधन के लिए व्यापक उपाय कर रही है। 25 सेक्टरों में बांटा गया है और महाकुंभ को और साथ ही 5 मंडलों में। इसके अलावा महाकुंभ मेले में महाकुंभ नगर के सेक्टर 7 में कल से 3 दिन का ड्रोन समारोह शुरू हुआ है। इसका आयोजन राज्य पर्यटन विभाग ने कर रहा है। इसमें रात्रि के दौरान आसमान में सैकड़ों ड्रोन अपने कर्तव्य दिखा रहे हैं। अमृत कलश और समुद्र मंथन के साथ श्रद्धालुओं की भक्ति दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रही है। तो ये थी वो
महाकुंभ 2025 से जुड़ा हर अपडेट अब आपको मिलेगा कुंभवाणी पर। कुंभवाणी, जी हाँ, महाकुंभ को समर्पित आकाशवाणी का विशेष चैनल। सुनिए हर दिन 3 कुंभ बुलेटिन, सुबह 8:30, दोपहर 2:30 और शाम 8:30 पर प्रयागराज में FM 103.5 MHz पर। इसके अलावा कुंभवाणी उपलब्ध है हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर।
आज सवेरे में अब पलटते हैं एक और पन्ना और चलते हैं आपके शहर सुभद्रा के साथ चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद।
यस नवीन, स्टार्टिंग विद न्यूज फ्रॉम चेन्नई, द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ चेन्नई मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड TG विनय इंस्पेक्टेड द पेरू डिसैलिनेशन प्लांट प्रोजेक्ट ऑन फ्राइडे। फंडेड बाय जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, द प्लांट विल प्रोड्यूस 400 मिलियन लीटर ऑफ पोर्टेबल वाटर एवरी डे, बेनिफिटिंग 22.67 लाख रेजिडेंट्स इन चेन्नई, तांबरम एंड नियर बाय विलेजेस। द फैसिलिटी इंक्लूड्स अ 59 किलोमीटर पाइपलाइन टू ट्रांसपोर्ट वाटर टू पोरूर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव infrastructure. Getting to Bengaluru now, the Karnataka Governor Thavar Chand Gehlot inaugurated India's largest chain of art exhibitions titled Heart of Art in Bengaluru yesterday. The exhibition showcases a diverse array of artistic expressions, promoting the rich cultural heritage and creativity of Indian artists. In his address, the Governor highlighted the role of the art exhibition as a bridge connecting society with the talent, ideas and creativity of the artists. He noted that the exhibits in the art show address crucial social issues, environmental concerns, human sensibilities and cultural heritage. Getting to Hyderabad now, Telangana Governor Jishnu Dev Varma has highlighted the historical ties between Uttar Pradesh and Hyderabad at a program held at Raj Bhavan in Hyderabad last evening on the occasion of the Uttar Pradesh Foundation Day. The governor lauded the Ek Bharat Shrestha Bharat initiative, emphasizing its role in fostering cultural unity across the nation. Describing Uttar Pradesh as the heart of the country, the governor praised its vibrant culture, ancient traditions and profound spiritual heritage. And Naveen, what about other news, other metro city news?
सुभद्रा, दिल्ली सज चुका है पूरी तरह से गणतंत्र दिवस के लिए और खासकर बात करें हम अगर कर्तव्य पथ की तो लगभग 10,000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। आमंत्रित अतिथियों में दुर्घटना निवारण और आपदा सहायता, आपदा मित्र, स्वयंसेवक, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, किसान उत्पादक संगठन FPO, PM किसान सम्मान निधि लाभार्थी, माई भारत स्वयंसेवक और कई अन्य व्यक्ति शामिल हैं। दिल्ली के पांडव नगर के आपदा मित्र स्वयंसेवक पंकज दास ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि ये उनके लिए सपने के सच होने जैसा क्षण है।
कई लोगों का सपना रह जाता है, मैंने पूरी जिंदगी में नहीं सोचा था मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और मैं कभी पीएम के साइड में रहूंगा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है।
इस बीच उत्तरी जिले की आशा कार्यकर्ता नीलम ने सरकार को उनके योगदान के लिए बेहद जरूरी पहचान देने के लिए धन्यवाद दिया।
बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे प्रधानमंत्री से आमने सामने देखने का मौका मिलेगा, हमें उनको ये बताना है कि आशा और की भी हम ही समाज का एक हिस्सा होते हैं, आप हेल्प करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है।
ये कार्यकर्ता और स्वयंसेवक समाज की आपदा प्रतिक्रिया से लेकर सार्वजनिक स्वास्थ्य तक मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बात अब दिल्ली मेट्रो की। दिल्ली मेट्रो कल सुबह 3 बजे से सभी लाइनों पर अपनी सेवाएं शुरू करेगी ताकि जनता को गणतंत्र दिवस समारोह देखने के लिए कर्तव्य पथ तक पहुंचने में सुविधा हो। दिल्ली मेट्रो के अनुसार सुबह 6 बजे तक 30 मिनट के अंतराल पर ट्रेन चलेंगी, जिसके बाद दिन के बाकी समय के लिए नियमित समय सारणी का पालन किया जाएगा। दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान परेड को सुचारू मार्ग को सुविधाजनक बनाने के लिए कुछ सड़कों पर यातायात प्रतिबंधित रहेगा। यातायात पुलिस ने यातायात परामर्श जारी करते हुए बताया है कि परेड सुबह 10:30 बजे विजय चौक से शुरू होगी और कर्तव्य पथ सी हेक्सागन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा, तिलक मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग और नेताजी सुभाष मार्ग से होते हुए लाल किले तक जाएगी। पुलिस ने कहा है कि नागरिकों से कि 1 बजे तक परेड रोड के जो मार्ग है उससे आप बचे रहें, ये सलाह दी गई है। मुंबई का रुख करें तो वर्ली बांद्रा सी लिंक को धर्मवीर स्वराज्य रक्षक छत्रपति संभाजी महाराज मुंबई तटीय सड़क परियोजना के उत्तर की ओर से हिस्से के रूप में जोड़ने वाला पुल 27 जनवरी से आम लोगों के लिए खुल जाएगा। अगली खबर, मुंबई के कफ परेड में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में भारत के डाक विभाग द्वारा आयोजित महापैक्स 2025 के दौरान 1975 की प्रतिष्ठित बॉलीवुड फिल्म शोले को समर्पित एक विशेष पोस्टकार्ड पैक और एक स्मारक कवर जारी किया गया है। रुख करते हैं हम कलकत्ता का, तो पश्चिम बंगाल में कल द्वारे सरकार अभियान की शुरुआत हुई। द्वारे सरकार पश्चिम बंगाल सरकार का एक ऐसा सेवा वितरण कार्यक्रम है जिसमें विभिन्न सरकारी विभाग, ब्लॉक और नगर पालिकाओं में एक स्थान पर शिविर लगाते हैं, जहां लोग विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। आज सवेरे में अब बात करते हैं अपने शहर के मौसम की। दिल्ली की बात करें, हल्का कोहरा छाया रह सकता है, न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, अधिकतम 23 डिग्री। मुंबई आसमान साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 19 और अधिकतम तापमान 36 के आसपास रहेगा। कोलकाता आसमान साफ रहेगा, तापमान की बात करें तो 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। सुभद्रा।
Chennai is expected to have fog mist in the morning. Partly cloudy sky will be seen later on. The minimum temperature was 21 degrees Celsius and the maximum will be around 31. Bengaluru is expected to have fog or mist would occur only in the morning. Minimum temperature was 16 degrees Celsius. Maximum would be around 29 degrees. Hyderabad is expected to have fog mist again in the morning. Partly cloudy sky will be seen later on. The temperature will hover between a minimum of 18 degrees Celsius, maximum of around 31 degrees Celsius.
मौसम की बात, खेल की बात, कुंभ की बात, yes. और अब बातें इतिहास की।
Yes, history, of course.
सुभद्रा।
1924, the first Winter Olympics games took place in the French Alps on this day.
1980, आज का दिन था जब मदर टेरेसा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कुष्ठ रोगियों और अनाथों की सेवा में अपनी जिंदगी समर्पित करने वाली मदर टेरेसा को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया। मदर टेरेसा ने जरूरतमंदों की मदद के लिए मिशनरीज ऑफ चैरिटी नामक संस्था की स्थापना की थी। दुनिया भर में इसकी शाखाएं हैं।
गोइंग बैक इन टाइम, 1919, द लीग ऑफ नेशंस वाज फाउंडेड, द प्रेडिसेसर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एंड द फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डिवोटेड टू मेंटेनिंग वर्ल्ड पीस।
1980 में चलते हैं एक बार फिर। नागरिक सम्मान भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि प्रदान करने का सिलसिला फिर से शुरू किया गया था। सम्मान प्रदान करने का जो चलन था वो 1977 में रोक दिया गया था।
1945, in an effort to prevent tooth decay, Grand Rapids, Michigan became the first U.S. city to add fluoride to its water system. And in 1961, the animated film 101 Dalmatians was released in the United States. It became a Disney classic, specially noted for the wicked woman character Cruella De Vil. Adapted from the novel of the same title, it became the 10th highest grossing film of 1961. And of course, we've seen the current versions.
1961 के बाद आपको अब मैं 1983 में लिए चलता हूँ. आचार्य विनोबा भावे, इन्हें आज ही के दिन भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई थी. भूदान आंदोलन के प्रणेता थे, राष्ट्रीय शिक्षक और महात्मा गांधी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी कहलाने वाले विलक्षण सत्यान्वेषी आचार्य विनोबा भावे के जीवन में कर्म, ज्ञान और भक्ति का ऐसा अद्भुत संगम था कि बहुत से लोग उन्हें संसार का आध्यात्मिक गुरु कहते थे और स्वप्नदृष्टा भी मानते हैं कि जय जगत कहकर अभिवादन का उनका आह्वान उनकी छवि गढ़ता है. महात्मा गांधी ने दिया था विनोबा भावे को आचार्य का नाम.
2025, January 25. Well, friend, this is not history. It is happening this evening. A rare alignment of few celestial planets will be seen across the skies. And of course, these are Mars, Neptune, Jupiter, Uranus, Venus and Saturn. It's called the planetary parade. The celestial wonder will be visible from every corner of the Earth. And of course, there are apps to, you know, view this great event.
आज के दिन 2002 में भारत ने मध्यम दूरी तक मार करने वाले परमाणु क्षमता से लैस प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण किया था. तो ये थी वो तमाम घटनाएं जो जुड़ी हुई थी आज के दिन से. और अब याद करेंगे उन व्यक्तियों के लिए जिनके लिए आज का दिन बहुत खास है, उनका दिन खास है और उनकी वजह से हमारे लिए आज का दिन खास है.
The national poet of Scotland who wrote lyrics and songs in Scottish and in English, Robert Burns, was born this day in 1759. Burns' greatest works were a vivid insight into the aspirations and anguishes of the less privileged and his hopes for equality and a better world. And 1874, birth anniversary of English author William Somerset Maugham, best known for the novels Human Bondage, The Moon and the Sixpence, Cakes and Ale and The Razor's Edge, was born this day in 1874.
भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार, पत्रकार और कादम्बिनी पत्रिका के संपादक राजेंद्र अवस्थी की भी आज जयंती है. आज के दिन जबलपुर में उनका जन्म हुआ था. भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार और पत्रकार थे, कादम्बिनी पत्रिका के संपादक थे. उन्होंने एक पत्रकार के रूप में कई मापदंड स्थापित किए. साहित्य सृजन की अद्भुत कला थी उनमें. नवभारत, सारिका, नंदन, साप्ताहिक हिंदुस्तान के संपादक रहे. कई चर्चित उपन्यास लिख लिए, कई कहानियां लिखी और वो आर्थर गिल्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी रहे. दिल्ली सरकार की हिंदी अकादमी ने उन्हें वर्ष 1997-98 में साहित्यिक कृति से सम्मानित किया था.
1824, we remember Michael Madhusudan Dutt. It's his birth anniversary, of course. He was a poet and dramatist, the first great poet of modern Bengali literature. He studied Bengali, Sanskrit and Persian, but aspired to write in English. And much later, he switched back to Bengali language. And he was the first Bengali playwright and pioneered the sonnet form in the language. His best known work is, of course, the epic poem Meghnad Vadh Kavya, composed in 1861, The Slaying of Meghnad.
Meghnad Vadh ke alawa, Michael Madhusudan ne likhi Tilotma, व्रजांगना और वीरांगना. मुख्य रूप से वो कवि थे.
एंड फ्रेंड्स, बर्थ एनिवर्सरी ट्रिब्यूट्स टू वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वोकलिस्ट ऑफ आवर टाइम्स, जेम्स एटा हॉकिंस, एलियस एटा जेम्स, फ्रॉम लॉस एंजेलिस, कैलिफोर्निया. द लेडी क्रूनर सैंग इन स्टाइल्स रेंजिंग फ्रॉम R&B, ब्लूज, सोल, गॉस्पेल एंड जैज. हर आर्टिस्ट्री वॉज रिकग्नाइज्ड विद 4 ग्रैमी अवार्ड्स, इंक्लूडिंग 1 इन 2003 फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट, ऑल्सो इंडक्शन इन टू द रॉक एंड रोल हॉल ऑफ फेम इन 1993, द ब्लूज हॉल ऑफ फेम 2001, The Grammys, which honored it with its Hall of Fame award in 1999, notes that the singer's voice soared like a swooning angel over the billowing clouds of strings in her timeless ballad. An example right here.
My heart was wrapped up in clover. The night I found a dream that I could speak to, a dream that I
can call my own. I found a thrill to.
इस खूबसूरत संगीत के बाद, इस खूबसूरत आवाज के बाद, हम आपको एक बार फिर हिंदी साहित्य की ओर लिए चलते हैं. नाम कृष्णा सोबती. आज उनकी पुण्यतिथि है. प्रसिद्ध लेखिका जिन्होंने हिंदी की कथा भाषा को अपनी विलक्षण प्रतिभा से अप्रतिम ताजगी और स्फूर्ति प्रदान की. जन्म गुजरात में हुआ था, पंजाब के हिस्से में जो अब पाकिस्तान में है. साहित्य में उनके योगदान के लिए इन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा गया. अपनी कुछ रचनाओं के कारण वो विवादों में भी रही. सोबती का प्रसिद्ध उपन्यास मित्रो मरजानी था जिसने उन्हें प्रसिद्धि दिलाई. इन्होंने हशमत नाम से भी लेखन का कार्य किया था और हशमत नाम से उसको प्रकाशित भी करवाया, जो कि लेखकों और उनके दोस्तों की कलम के चित्रों का संकलन था. कृष्णा सोबती हिंदी में लिखते समय कई बार पंजाबी और उर्दू के मुहावरों का उपयोग करती थी. एक छोटे से उनका हमने इंटरव्यू का क्लिप निकाला है जो दूरदर्शन पे था, और देखिए वो अपने साहित्य और अपनी लेखनी के बारे में क्या कहती हैं.
क्योंकि मैं बहुत वक्त लेती हूँ चीजों को अपने अंदर व्यक्त करने के लिए, उन्हें अपने में स्थित करने के लिए, उन्हें अपने तरीके से जांचने के लिए. और तब आप अचानक एक दिन महसूस करते हैं कि जो पूरा तना है आपसे कुछ करने जा रहा है, आप कुछ करना चाहते हैं. और वो जो चीज है वो किसी पहाड़ पर चढ़ने के मुकाबले से कम नहीं है. जब आप एक बार पहली पंक्ति बुक करते हैं तो आपको लगता है कि एक पन्ने पर आप अपनी सत्ता को किसी दूसरे से बांट रहे हैं, और वो सत्ता जो है आपने उसको सौंपी है जो पहली पंक्ति कागज के ऊपर आई.
ये आवाज थी कृष्णा सोबती की, जिनकी आज पुण्यतिथि है. 1989 में जिंदगी नामा जिंदा रुख नाम से एक उपन्यास निकाला जिसके लिए कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया.
अमेरिकन सिंगर सॉन्गराइटर एक्ट्रेस प्रोड्यूसर एलिशा की सेलिब्रेट्स अ बर्थडे टुडे. शी प्लेज द पियानो, सिंग्स आरएनबी एंड सोल म्यूजिक. शी हैड अ सक्सेसफुल करियर विद 14 ग्रैमी अवार्ड्स, अ न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलिंग ऑथर, एन एंटरप्रेन्योर एंड अ पावरफुल फोर्स इन द वर्ल्ड ऑफ फिलैंथ्रोपी एंड इन द ग्लोबल फाइट अगेंस्ट एचआईवी एंड एड्स. हैप्पी बर्थडे एलिशा.
World ain't for the faint of heart. Nah, feel like we were made to fall apart. I could build your heart an army. Yeah, don't gotta do this all by yourself. If you need someone, you call me. Yeah, you got me. Yeah, you got me. Oh, I could be a lifeline. Stay with you till the sunrise. When you're alone, you know me, you're alone. I'll be by your side. Oh, I could be the reason that you don't feel your demons.
आज जन्मदिन है भारतीय सिनेमा की प्रसिद्ध पार्श्व गायिकाओं में से एक कविता कृष्णमूर्ति का. जब वो मात्र 8 साल की थी तब एक गायन प्रतियोगिता में उन्होंने पहला पुरस्कार जीता था. करीब दर्जन भर भाषाओं में 25,000 गीत गाए हैं. पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है उनको, लेकिन इस गीत के लिए उन्हें हमेशा हमेशा हम याद करेंगे. जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं.
तुमसे मिलते ना जाने क्यों, तुमसे मिलते
Birth anniversary tribute to Latin jazzman Antonio Carlos Jobim, Brazilian songwriter, composer, arranger, one of the creators of the subtle, whispery jazz-influenced popular song style known as Bossa Nova. This catchy rhythmic music helped turn the cultural spotlight on Brazil, later becoming a permanent part of the American musical landscape.
चलते चलते हम अपने सुनने वालों को बता दें कि आज हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस है। आज ही के दिन 1971 में एक अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई थी। तो बहुत खूबसूरत सा गीत है, छोटा सा है, सुनते हैं और आपको छोड़े जाते हैं।
शिमले दिरा है, चंबा कितनी दूर है, मायने मेरी है शिमले।
आज के संक में बस इतना ही। मुझे नवीन और सुभद्रा को दे इजाजत। नमस्कार, नमस्कार।